नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर मॉरिशस में आज से शुरू हो रहे 9वें हिंद महासागर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री जयशंकर ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम से मुलाकात के बाद दोनों देशों की साझेदारी की सराहना की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने वॉशिंगटन में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने परस्पर व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा सहयोग और क्वाड ढांचे में साझेदारी की समीक्षा की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के इसराइल को पूरी तरह तबाह करने के बयान के बीच इसराइल ने अमेरिका ईरान संघर्ष विराम में पाकिस्तान की मध्यस्थता की निंदा की। रूस ने ऑर्थोडॉक्स ईस्टर सप्ताहांत के दौरान यूक्रेन में 32 घंटे के युद्ध विराम की घोषणा की और आज विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में आज से शुरू हो रहे 9वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री इस अवसर पर मुख्य भाषण भी देंगे। एक रिपोर्ट।
सम्मेलन के दौरान डॉक्टर जयशंकर अन्य प्रतिभागी देशों के विदेश मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। ये दौरा भारत की पड़ोसी पहल नीति, विजन, महासंघ और वैश्विक दक्षिण के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने पोर्ट लुइस में प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम से मुलाकात की। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पिछले एक वर्ष में भारत मॉरिशस साझेदारी में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उनकी चर्चा में समुद्री सहयोग, विकास साझेदारी, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों को शामिल किया गया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की तीन प्रमुख विदेश नीति प्राथमिकताओं, पड़ोसी पहले नीति, विजन महासंघ और वैश्विक दक्षिण के प्रति प्रतिबद्धता में मॉरिशस का एक विशिष्ट स्थान है। उन्होंने मॉरिशस की विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री कल संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज।
विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने वॉशिंगटन में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भेंट की। व्हाइट हाउस में इस बैठक के दौरान प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों पक्षों ने व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा सहयोग और क्वाड ढांचे पर जोर देते हुए भारत अमेरिका साझेदारी की समीक्षा की। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर भी बैठक में उपस्थित थे। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चर्चा रचनात्मक और भविष्य के अनुकूल हुई। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो के अगले महीने भारत आने की संभावना है। इससे पहले श्री मिश्री ने अमेरिका के उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से भी भेंट की। उन्होंने पिछले वर्ष दिसंबर में आयोजित विदेश कार्यालय परामर्श के बाद से द्विपक्षीय एजेंडा पर हुई प्रगति की समीक्षा की। बैठक में पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों और आपसी हित के अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की। इस दौरान श्री खट्टर ने भारत और भूटान के बीच अद्वितीय और सदियों पुरानी मित्रता को मजबूत करने में भूटान के राजा के निरंतर मार्गदर्शन और नेतृत्व के लिए आभार व्यक्त किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स ईस्टर सप्ताहांत के दौरान यूक्रेन में 32 घंटे के युद्ध विराम की घोषणा की। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने छुट्टी मनाने के लिए संघर्ष को रोकने का प्रस्ताव रखा था। क्रेमलिन द्वारा जारी पुतिन के आदेश में रूस की सेनाओं को शनिवार से रविवार शाम तक युद्ध विराम का पालन करने का निर्देश दिया गया है। पुतिन की घोषणा पर यूक्रेन की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। युद्ध विराम सुनिश्चित करने के पिछले प्रयास अप्रभावी रहे हैं। रूस ने पिछले साल अमेरिका और यूक्रेन द्वारा प्रस्तावित 30 दिन के बिना शर्त युद्ध विराम को प्रभावी रूप से अस्वीकार कर दिया है, लेकिन रूस ने कई छोटे एकतरफा युद्ध विरामों की घोषणा की है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम की प्रभावशीलता पर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल प्रवाह के संबंध में सहमत शर्तों का पालन नहीं कर रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान के तेल की आवाजाही के लिए इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से गुजरने वाले टैंकरों पर शुल्क लगाने की खबरों के खिलाफ चेतावनी दी। एक रिपोर्ट।
व्हाइट हाउस ने संघर्ष विराम समझौते के तहत होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखने के अपने समर्थन को दोहराया है और ईरान की सेना द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर टोल लगाने के किसी भी प्रयास का विरोध किया है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने लेबनान के साथ सीधी बातचीत को मंजूरी दे दी है। इन वार्ताओं का उद्देश्य ईरान समर्थित हिजबुल्ला को निशस्त्र करना और दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की संभावनाओं को तलाश है। श्री नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि इसराइल और लेबनान के बीच कोई संघर्ष विराम नहीं है। उन्होंने कहा कि इसराइल की सेना उत्तरी इसराइल में सुरक्षा बहाल होने तक हिजबुल्ला के खिलाफ अभियान जारी रखेगी। इसराइल ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की भी कड़ी आलोचना की है। इसराइल ने उनकी टिप्पणी को अत्यंत आपत्तिजनक बताया और पश्चिम एशिया में जारी तनाव में एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने भी इन बयानों की निंदा करते हुए उन्हें स्पष्ट यहूदी विरोधी बताया। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि संघर्ष विराम स्वीकार करने का निर्णय देश के नेतृत्व द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया है, इसे सर्वोच्च नेता ने स्वीकृति दी है। उन्होंने इस कदम को कमजोरी के बजाय एक रणनीतिक कदम बताया। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
ईरान के पूर्व विदेश मंत्री कमाल खर्राजी का आज निधन हो गया। खर्राजी इस सप्ताह के शुरू में अपने आवास पर हुए हमले में घायल हो गए थे। उनकी पत्नी की भी इसी हमले में मृत्यु हो गई थी। खर्राजी वर्ष 1997 से 2005 तक देश के विदेश मंत्री रहे। उन्होंने इस्लामी क्रांति के बाद भी कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वे रणनीतिक परामर्श परिषद के सदस्य भी थे। कुवैत ने ईरान और उसके सहयोगियों पर ईरान संघर्ष से जुड़े दो सप्ताह के युद्ध विराम के बावजूद अपने क्षेत्र में ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि कल रात देश में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर हमले किए गए। इस घटना के बाद कल इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच होने वाली वार्ता पर संकट गहरा गया है। इस बीच सऊदी अरब ने भी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान की जानकारी दी है। इस हमले में देश की महत्वपूर्ण पाइपलाइन प्रभावित हुई है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण यह पाइपलाइन लाल सागर तक तेल पहुंचाती है। उत्तर कोरिया और चीन के विदेश मंत्रियों ने द्विपक्षीय सहयोग को और प्रगाढ़ करने तथा दोनों देशों के बीच आदान प्रदान बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल प्योंगयांग का दौरा किया। ये 7 वर्षों में उत्तर कोरिया की उनकी पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री चो सोन से फोन पर बातचीत की। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार दोनों पक्षों ने वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया। हालांकि विशिष्ट विवरणों का खुलासा नहीं किया गया है। आज विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर हेनिमैन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 का विषय है सतत स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच गुवाहाटी में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 विकेट से मात दी। 182 रन के लक्ष्य के जवाब में लखनऊ ने 3 विकेट शेष रहते अंतिम गेंद पर जीत हासिल की। लखनऊ के मुकुल चौधरी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर मॉरिशस में आज से शुरू हो रहे 9वें हिंद महासागर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री जयशंकर ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम से मुलाकात के बाद दोनों देशों की साझेदारी की सराहना की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने वॉशिंगटन में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने परस्पर व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा सहयोग और क्वाड ढांचे में साझेदारी की भी समीक्षा की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के इजराइल को पूरी तरह तबाह करने के बयान के बीच इजराइल ने अमेरिका ईरान संघर्ष विराम में पाकिस्तान की मध्यस्थता की निंदा की। रूस ने ऑर्थोडॉक्स ईस्टर सप्ताहांत के दौरान यूक्रेन में 32 घंटे के युद्ध विराम की घोषणा की। और आज विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।